जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 Rama, 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 Hare, Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai Gaura Haribar, Haribar, Haribar. Hari bol Nitai Gaura. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరేత్ నష్ట ప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైషికీ. శ్రీమద్భాగవతం స్కంద 10 అధ్యాయ 10 శ్లోక సంఖ్య 13. అతః శ్రీమదందస్య దారిద్ర్యం పరమ అంజనం ఆత్మ ఔపమేయేన భూతాని దరిద్ర పరమా ఈక్షతే. అసత శ్రీమదాందస్య అసత శ్రీమదాందస్య దారిద్ర్యం పరమాంజసాంజనం దారిద్ర్యం పరమంజనం ఆత్మోపమేన భూతాని దరిద్రః పరమీక్షతే అసతః శ్రీమదందస్య దారిద్ర్యం పరమంజనం ఆత్మోపమేన భూతాని దరిద్రః పరమీక్షతే ఆత్మోపమేన భూతాని అసతః శ్రీమదాంతస్య దరిద్ర్యం పరమౌషధం ఆత్మోపమేన భూతాని దరిద్ర్యం పరమీక్షతే. అసత శ్రీమదాంతస్య దారిద్ర్యం పరమంజనం ఆత్మోపమేన భూతాని దరిద్రః పరమీక్షతే. అసత శ్రీమదాంతస్య దారిద్ర్యం పరమంజనం ఆత్మోపమేన భూతాని దరిద్ర్యం పరమీక్షతే. శబ్దార్థ ఇస్ ప్రకారే అసతః ఐసే మూర్ఖ ధూర్త వ్యక్తి కా శ్రీమద్ అందస్య ధన్ తథా ఐశ్వర్య కే కారణ్ అంధా హువా దారిద్ర్యం गरीबी परम परम अंजनम आंखों का सर्वोत्तम अंजन है जिससे वस्तुएं यथारूप में देखी जा सकती है। आत्मोपमेयन अपने से तुलना करके भूतानि जीवों को दरिद्र गरीब व्यक्ति परम पूर्णतया ईक्षते देखता है। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद नास्तिक मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाता, अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है जिससे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकता है। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुख होती है, अतएव वह कभी नहीं सोचता कि अन्य लोग उनकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। तात्पर्य जब भी वे लोग जो पहले दरिद्र थे अपने धन का सदुपयोग परोपकार के कार्य में तथा यथा अशिक्षितों के लिए स्कूल खोलने तथा रोगियों के लिए अस्पताल खोलने में करना चाहते हैं। इस संबंध में एक शिक्षा प्रद क्या है जो पुनर्मूषिको भव फिर से चूहा बन जाओ नाम से प्रसिद्ध है। एक चूहा बिल्ली से अत्यंत तंग आ चुका था, अतः वह एक साधु के पास पहुंचा कि उसे बिल्ली बना दे। जब वह चूहा बिल्ली बन गया तो उसे कुत्ता सताने लगा, और जब कुत्ता बन गया तो शेर सताने लगा। किंतु जब वह शेर बन गया तो उसने साधु की ओर घूरने लगा और घूर के, और जब साधु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो तो उस शेर ने कहा मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तब उस साधु ने उसे शाप दिया तुम फिर से चूहा बन जाओ। ऐसे ही बात सारे विश्व में चल रही है। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी चूहा बनता है तो कभी शेर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड प्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियम द्वारा होता है, किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली हो तो उसे साधु की संगति में रहने से भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि दरिद्रता के माध्यम से नलकुवेर और मणिग्रीव को भक्ति के मार्ग पर लगाना चाहते थे, इसलिए उन्हें शाप दिया। वैष्णव की कृपा ऐसी होती है
वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य नेक नहीं बन सकता। हरवा भक्तस्य कुतो महद्गुणा, किंतु अवैष्णव को कितना ही दंड क्यों ना दिया जाए, वह कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकता। ओम ज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। मलकुएर मणिग्रीव का उद्धार के विषय में चर्चा हो रही है। वैसे तो नलकुएर मणिग्रीव का उद्धार भगवान से कृष्ण ने किया, लेकिन नलकुएर मणिग्रीव का वास्तविक उद्धार नारद मुनि ने किया। तो नारद जी के द्वारा किस प्रकार नलकुएर मणिग्रीव का उद्धार हुआ, इसके विषय में प्रसंग चल रहा है। अभी हम सबको मालूम है, पिछले कुछ श्लोकों में नलकुएर मणिग्रीव मंदाकिनी में वो नहा रहे थे, वो जल क्रीड़ा कर रहे थे अनेकों स्त्रियों के साथ, वो भी नग्न थे और स्त्रियां भी नग्न थी, और ये शराब भी पिए हुए थे। जब नारद मुनि शिवजी से मिलने के लिए जब कैलाश की ओर जा रहे थे, तो अगर आप कैलाश जाना चाहते हो तो बद्री होते हुए और ये अलकापुरी जो कुबेर का जो राजधानी है वो पार करते हुए आपको आगे जाना होगा कैलाश में। तो मंदाकिनी कैलाश पे आती है, तो उसमें बहुत सुंदर रमणीय स्थान है उधर। ये नलकुवेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र होने के कारण, कुबेर तो बड़े देवताओं की सारा संपत्ति उनके पास है और गॉड ऑफ वेल्थ, संपत्ति के देवता है, जिनसे भगवान स्वयं आके वो उधार लेते हैं, है कि नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले श्रीनिवास कल्याणम गए थे उधर, बालाजी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुबेर को, मुझे लोन चाहिए लोन के लिए एप्लीकेशन दिया। कुबेर ने कहा सब कुछ तो आपकी, आप ही ले लो, मैं तो खाली खजाना को देखभाल करने वाला, आपका ही। नो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी शादी है, मेरी विवाह है, उसके लिए मेरा पैसा लगाऊंगा, मैं देवताओं का पैसा नहीं लूंगा थोड़ा नियम पालन करते भगवान। तो उधर कुबेर ने कहा ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा। भगवान ने क्या क्या है, तो आपको एप्लीकेशन देना होगा, तो मैं सैंक्शन करूंगा, तो आपको चिट्ठी साइन करना होगा, मैं इतना लोन लिया, इतना इंटरेस्ट है, सब कुछ पूरा श्रीनिवास कल्याणम, वो पूरा प्रसंग में वो पूरा पत्र भी है, क्या पत्र लिखा गया था, निवेदन पत्र, कुबेर ने सैंक्शन किया, क्या क्या कितना लोन, क्या हिसाब से इंटरेस्ट रेट होगा, भगवान का साइन भी है उसके ऊपर, ऐसा वर्णन है श्रीनिवास कल्याणम। वो पत्र सब देवताओं के सामने पढ़ा भी गया है, बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो एक कुबेर जी है, भगवान की लीला में भाग लेते हैं, लेकिन कुबेर के जो पुत्र है नल कुबेर और मणिग्रीव, लेकिन वो कहते थे दिखने में नल कुबेर और मणिग्रीव। ग्रीव का अर्थ है गला, गला के पास उनके पास बड़ा मणि था, मणि मतलब इतना गांध था। दिखने में बिल्कुल कुरूप थे वो लोग, बिल्कुल उनके अंदर कोई सुंदरता नहीं थी। लेकिन इस कलयुग में या कोई व्यक्ति का जो निम्न स्तर की चेतना रहती है, वो लोग धन के जो अंधकार में धन जिसको प्राप्त होता है वो सबके नजरों में सुंदर लग जाता है। भले ही कितना सुंदर क्यों ना हो कोई व्यक्ति, कितना विद्वान क्यों ना हो व्यक्ति, भले ही वो कितने बड़े परिवार में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर किसी के पास धन आ जाता है सब लोग उनको वाह वाह करने लग जाते हैं, वाह बहुत सुंदर हो तुम, सबसे बड़े परिवार में जन्म लिए हो और तुम्हारे जैसा कोई विद्वान है ही नहीं। तो ये बात इसलिए कहा जा रहा है कुछ श्लोकों के पहले, खास करके आठवां श्लोक में आपने सुना कि इधर नारद मुनि जब आके नलकुएर मणिग्रीव को इस प्रकार की स्थिति में देखा, उनको उनके ऊपर बहुत दया आई। तब नारद जी सोचने लगे अस्तित्व में ये जो मद है, अहंकार है, चार चीजों से उत्पन्न होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, जन्म बड़े ऊंचे परिवार में जन्म लेना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है कि बहुत सारे संपत्ति को प्राप्त करना, और जन्म ऐश्वर्य श्रुत बड़े पढ़े लिखे होना, और श्री सुंदर होना। तो ये चार चीजों में जो अहंकार जो धन से आता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? मान लो कि धन है तो आप धन के बल पे आप लोगों को नचा सकते हो, मेरी सुंदरता का गुणगान गाओ, बोलेंगे तुम्हारे जैसे कोई सुंदर है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाकी तीन चीजों से उत्पन्न हुआ जो मद है, अहंकार है, वो धन की वजह से आ जाता है। इसलिए ये अहंकारी व्यक्ति हमेशा पाप करता है। जो धन के अहंकार से उत्पन्न हुआ जो पाप है, बाकी तीन प्रकार के अहंकार से उत्पन्न हुआ पाप को भी उसके अंदर शामिल रहता है। इसलिए धनी व्यक्ति का जो अहंकार है वो बहुत खतरनाक माना जाता है, उसको बहुत सारा गहरे अंधकार में लेके जाता है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं ये धनी होना जो है वो सबसे बड़ा पाप है। भले ही उन्होंने कहा कि जन्मैश्वर्य श्रुतश्री विद यदमान मदपुमान नैवार्यत विदातुम मई सामकिंचन गोचरम। तो इस जगत में लोग सोचते हैं कि अगर मैं सुंदर हूं तो बड़ा भाग्यवान हूं, अगर कोई सोचता है अगर कोई धनी है तो भाग्यवान है, अगर कोई बड़े परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, ठाकुर परिवार में जन्म लिया, सोचता है कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं, अगर कोई किसी का सुंदरता है वो सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो सोचता है कि मैं, लोग भी बोलते हैं बड़े भाग्य है, बड़े भाग्य से। लेकिन कुंती महारानी कहते हैं कि सब दुर्भाग्य है, क्योंकि ये इन तथाकथित भाग्य के द्वारा क्या हो रहा है हमारे हृदय में, अहंकार उत्पन्न हो रहा है, मदांधा नाम जो लिखा है ना, मद उत्पन्न होता है। इसलिए कुंती महारानी भी यही श्लोक उच्चारण करती है, कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर येदमान मद। क्यों? क्योंकि ये मद के वजह से, चार चीजों से उत्पन्न हुआ मद अहंकार की वजह से ना अर्हति अविधातुं वै, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति करने की योग्यता खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि अगर कोई धनी व्यक्ति मंदिर में बाल आ भी जाए, वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, इनको क्यों प्रणाम करूंगा, उनके अंदर वो नम्रता नहीं रहती है। तो नम्रता नहीं होने की वजह से वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, अर्हति न अर्हति, वो भक्ति करने की योग्यता को खो देते हैं। ये बहुत सरल सिद्धांत है, जिसके हृदय में नम्रता है उसी को भक्ति करने का अधिकार है, वही भक्ति कर सकता है। जिसके हृदय में नम्रता नहीं है वो उनके अंदर अहंकार है, वो अहंकार की वजह से वो भक्ति नहीं कर सकता, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। तो भक्ति करने का अधिकार क्या है? अधिकार है नम्रता, और अधिकार खोना ना अर्हति, अधिकार को खो दाना, उसका कारण क्या है? अहंकार। तो इसलिए ये चार चीजों से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है तो वो ये चार चीजें भले ही लोग उसको भाग्य मानते हैं लेकिन उसको दुर्भाग्य बना देता है। अहंकार जो है भाग्य को भी दुर्भाग्य बना देता है। इससे इस जगत में भाग्यवान होना भी दुर्भाग्य है। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि ये दुर्भाग्य से कोई धनी है। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहे हैं प्रभु जी क्या बोल रहे हो, दुर्भाग्य से कोई धनी बनता है क्या? सही बात है, दुर्भाग्य से कोई धनी बनता है, दुर्भाग्य से कोई पढ़ा लिखा बनता है। तब क्या करें, हम तो धनी हैं, दुर्भाग्य से हम धनी बन गए तो क्या करें? दुर्भाग्य से कोई सुंदर है तो क्या करें? तो अपने धन को, अपनी सुंदरता को, अपनी विद्वत्ता को भगवान की सेवा में लगाओ और शुद्ध करो। हमारे पास जो कलाएं होती हैं, योग्यताएं होती है, अस्तित्व में योग्यता ही अज्ञान है। जरा सा भी हमारे अंदर योग्यता है ना, मान लो कोई अच्छा गा सकता है, ये योग्यता है, लेकिन वो योग्यता ही भक्ति करने के लिए अयोग्यता, इसलिए वो योग्यता को अज्ञान कहा गया है। अभी आप देखिए, विद्याम च विद्याम च अस्तद्वेदो भयम सहा। लोग सोचते हैं कि अविद्या का अर्थ क्या है? अविद्या का अर्थ यह है योग्यता है। भौतिक जगत में कुछ कार्य करने की जो कुशलता है वही अविद्या है, क्योंकि उस अविद्या की वजह से हमारे अंदर अहंकार आती है। जो कार्य की वजह से हमको अहंकार आती है वो अविद्या माना जाता है। भले ही मान लो किसी को उपनिषद के ऊपर बड़ा अच्छा प्रवचन दे सकता है, सारा वेदों का ज्ञान उनके पास है, उसकी वजह से वो सोचता है कि मेरे से बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसका वो ज्ञान ही अहंकार का कारण बना, इसलिए वो ज्ञान क्या हुआ? अविद्या बन गया। तो ये सोचना कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं ये ही अविद्या है, यही सोचना मैं बड़ा धनी हूं ये अविद्या है। तो अविद्या किस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार युक्त है। भगवान हर चीज को सहन कर लेते हैं, भक्तों की गलती को सहन कर लेते हैं, कभी कभी गए किए गए गलतियों को सहन कर लेते हैं। कभी कोई स्वभाववश कोई भक्त मान लो कि पाप भी कर लेता है तो उसको भी भगवान सहन कर लेते, माफ कर देते हैं। लेकिन एक चीज को कभी माफ नहीं करते हैं, वो है अहंकार। तो अगर कोई दुर्भाग्य से कोई धनी है तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में आके अपनी धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से कोई पढ़ा लिखा है समझ लीजिए तो क्या करना चाहिए उनको? वो अपनी जो पढ़ाई लिखाई विद्वत्ता जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य, कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मैं ज्ञानी हो गया, तो वो उस ज्ञान को जो बुद्धि जो मिला है वही मैं भगवान की सेवा में लगाता हूं, ताकि मैं ये जो बुद्धि है, जो अज्ञान है, जो बुद्धि है, जो असल में ये क्या है, एक गंदगी है, प्रवृत्ति है, ये गंदगी है, तो उसको मुझे शुद्ध करना है। एक्सपर्टाइज इज इग्नोरेंस, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। मान लो कोई इस जगत में कोई एक्सपर्ट है कोई चीज में, तो असल में वो अज्ञान है। जो ज्यादा एक्सपर्ट है वो ज्यादा अज्ञानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कुंती महारानी इसलिए कहती हैं, इसी के आगे चलते हुए, भले उन्होंने चार चीजें कहा कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भैर, आगे उन्हीं के श्लोकों में कहती हैं कि नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो भले ही चार चीजों की वजह से अहंकार उत्पन्न होता है, लेकिन कुंती महारानी ने खास करके कहा भगवान उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिनके पास कोई धन नहीं है, अकिंचन है। जो अकिंचन होते हैं उनका धन भगवान है, जो निर्धन है भगवान ही उनका धन है। तो अनुमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पते नमः। तो भगवान कैवल्य लोगों के पति हैं और अकिंचन लोगों के भी पति हैं, अकिंचनों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये अकिंचन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अकिंचन व्यक्ति तभी बनता है जब भगवान का भक्त का विशेष कृपा हो। अभी नारद जी ने सोचा ये इतने बड़े बड़े इतना धन है उनके पास, इसकी वजह से वो कैसे हैं, असतः असत वस्तु को सत्य मान के असत्य सत्य करी वाणी, वो अनेक अनेकों मूर्ख बन गए, मूढ़ बन गए हैं, तो उनका उद्धार कैसे किया जाए? वैसे देखा जाए आठवें श्लोक में नारद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति धनी हो जाता है वो क्या करता है, वो धन के बल पे वो पाप करता है। क्या क्या पाप करता है? वो जुआ खेलता है और वो स्त्रियों के संग करता है, और तीसरा क्या करता है वो नशा करता है। स्त्रियों का संग करना, जुआ खेलना और नशा करना, ये तीन चीजें जो है धनी व्यक्ति का स्वभाव है। इसलिए आप देखिए, थोड़ा सा भी किसी के पास धन आ जाता है तुरंत वो विचार करने लग जाते, ये धन को मैं इन तीन चीजों में कैसे लगाऊं, मैं कैसे स्त्री को प्राप्त करूं। अब देखिए, किसी से पूछे कोई युवक से, आपका विवाह हुआ? तो बताएगा, नहीं प्रभु जी। तो क्यों? नहीं, थोड़ा पैसा कमा लो, बाद में विवाह करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है जैसे पैसा आएगा तो वो तुरंत उसी में लगाऊंगा। अगर थोड़ा सा बच जाता है पैसा तो क्या करता है, चलो मैं नशा करूंगा, क्योंकि वो भोग जो है केवल दुख देता है। इस जगत में भोग जो है वो दुख ही देता है, तो वो दुख को भूलने के लिए नशा की जरूरत है। क्योंकि जहां स्त्री है उधर निश्चित रूप में लोग नशा भी करते हैं। देखिए कोई भी नाइट क्लब वगैरह देखिए, उसके अंदर स्त्री भी रहती, नशा भी रहती। क्यों? क्योंकि उस स्त्री से उत्पन्न हुआ भोग अस्तित्व में उनको दुख दिया, लेकिन दुख को भुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नशा लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जो है आपको चाकू लेके काटता है तो उधर क्या करता है, वो एनेस्थीसिया देता है। क्यों? क्योंकि दर्द को, दर्द हो रहा है तो उसको भूलना पड़ेगा। तो कभी भी ये जो स्त्री है नशे के बिना हो नहीं सकती। अगर कोई स्त्री थोड़ा देर किसी पुरुष के साथ रहने की, पुरुष स्त्री के साथ रहने लगा, अगर नशा नहीं है वो निश्चित रूप से उसको छोड़ना ही है, वो भाग जाएगा उधर से अगर होश में है तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी क्या है, अभी स्त्री को संभालने के लिए धन की आवश्यकता है। तो धन तो अगर सीधे तरीके से कमाएंगे उतना धन तो मिलने वाला नहीं है, तो क्या करना होगा, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना होगा। जुआ का अर्थ है कि कोई भी ऐसा कार्य जो सीधे तरीके से धन नहीं कमाया जाता है, उल्टे तरीके से धन कमाया जाता है, उसको गैम्बलिंग है। इसलिए तीन चीजें हैं, लेकिन उसको पोषण करने के लिए नॉनवेज की बात, चौथा पाप है। ये चार पाप के बीच में बहुत गहरा संबंध है। ये नॉनवेज क्या है, अभी वो उसको उस प्रकार की भोग करने के लिए उसको रजोगुण की आवश्यकता है, इसलिए वो आहार जो है उस प्रकार का ग्रहण करता है जिसके द्वारा वो इस प्रकार की पाप करने की शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि जैसे हर कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, पाप करने के लिए ये मांस की आवश्यकता होता है। इसलिए जो मांस खाता है वो मांस खाना ही पाप नहीं है, बल्कि और पापों का भी वो जड़ बन जाता है। इसलिए एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मांस खाना जो है हर प्रकार का पाप का योनि है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल अदर सिंपल एक्टिविटी। वो नशा करता है, उसी को प्राप्त करता है, जुआ करता है, सब चीजें जो है मांस खाने। इसलिए आप देखिए, नौवां, दसवां और ग्यारहवां तीन श्लोकों में जीव हिंसा के ऊपर वर्णन किया गया है। क्यों वर्णन किया गया है? इसीलिए वर्णन किया गया है क्योंकि ये आठवां श्लोक में आपके ध्यान से देखे होंगे, केवल तीन पापों का वर्णन हुआ है। एक है स्त्री का, एक है जुआ खेल के, एक तीसरा नशा। तो मांसाहार का वर्णन तीन श्लोकों में प्राय हुआ है, या चार श्लोकों में होगा, नौ, दस, ग्यारह, बारह, चार श्लोकों में हुआ है। यानी पाप का विस्तार से वर्णन, जो व्यक्ति ऐश्वर्य से मदानदानम अहंकार से युक्त हो जाता है तो वो क्या करता है, वो पाप करता है। वो दूसरों को हिंसा जरूर देगा, हिंसा, दूसरों को हिंसा किए बिना कोई भी स्त्री संग नहीं कर सकता, दूसरों को हिंसा किए बिना कोई भी धन नहीं कमा सकता, हिंसा किए बिना कोई नशा नहीं कर सकता। तो ये हिंसा जो है उसका वर्णन चार श्लोकों में हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद जी नो मीट ईटिंग इसके बारे में बहुत चर्चा किए थे। क्यों चर्चा किए थे? अगर ये मांसाहार बंद हो जाए तो बाकी तीन पाप जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है तो शाकाहारी भोजन शरीर में रजस को उत्पन्न नहीं करता है, तो सात्विक रहता है। सात्विक व्यक्ति जो है सरल जीवन यापन करना चाहता है, उनको सुख भोग की लालसा ज्यादा नहीं रहती है, इसकी वजह से स्त्री की आकांक्षा नहीं करता है, उसकी वजह से उनको ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है और उसकी वजह से उनको ज्यादा दुख भी नहीं है, इससे नशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे पापों का जड़ क्या है, मांसाहार। मांसाहार का अर्थ क्या है, दूसरों को हिंसा करना। ये प्रवृत्ति कहां आती है, कब आती है, धन है तभी आती है। इसलिए 9 10 11 12 चार श्लोकों में विवरण हुआ है किस प्रकार धन में जो अंधकार में धन से उत्पन्न हुआ जो मद है उसकी अंधकार में जो डूब जाता है वो किस प्रकार केवल लोगों के लिए एक दुख का कारण बनता है, हिंसा हिंसक बनता है, हम देख सकते हैं। अभी आप देखिए पूरा विश्व में जहां आतंकवाद हुआ है, जहां झगड़ा हुआ है, जहां हिंसा हुआ है, उधर के लोग ज्यादा मांस खाते हैं। खास करके जहां ज्यादा गाय का मांस खाते हैं उधर ज्यादा आतंकवाद हुआ है। अब देख सकते हैं ये पूरा हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। जहां लोग मांस नहीं खाते उधर उतना आतंकवाद नहीं हुआ है। आप देखिए पंजाब में सबसे ज्यादा आतंकवाद हुआ है, क्यों है? आप देखिए विदेश पाश्चात्य देशों में सबसे ज्यादा माफिया उधर है, क्यों? क्योंकि उधर ज्यादा मांस खाते हैं। जिस जगह लोग ज्यादा मांस खाते हैं यहाँ उस जगह आप देख सकते हैं अशांति ज्यादा रहता है, पाप ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये चार श्लोकों में ये वर्णन करने के बाद खास करके इस श्लोक में वर्णन हुआ है, ये वैसे जो अहंकार से युक्त व्यक्ति है उसका इलाज क्या है। मान लो कोई ये अहंकार नामक बीमारी से वो डूबा हुआ है तो उसका इलाज क्या है। इसलिए इस श्लोक में एक शब्द है, वो है अंजनम। अंजनम का अर्थ है, अनेकों अनेक अर्थ है संस्कृत भाषा में। एक है काजल, दूसरा है कि दवाई। अंजनम का अर्थ है दवाई, बोलते ना अमृतांजन। वैसे तो आप आंखों में तो लगाते नहीं हो अंजन, ऑइंटमेंट है वो। अंजन का अर्थ है काजल, अस्तित्व में काजल है लेकिन वो काजल जैसा थोड़ा सॉफ्ट ऑइंटमेंट जैसा रहता है, ऑइंटमेंट है। मान लो कहीं दर्द हुआ तो उसको काजल लगाओ, अंजन लगाओ, तो वैसे बहुत सारे अंजन लगाएंगे तो आपका दर्द है मिट जाता है, बीमारी दूर होता है। तो इस श्लोक में क्या है वो बीमारी, क्या है वो दवाई जिसके द्वारा वो बीमारी दूर हो सकता है, तो वो दवाई देना शुरू किए। अस्तित्व में ये जो नारद जी का इस प्रकार का सोचना या प्रवचन जो है, इसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो क्या है? वो इसके अंदर आठवां श्लोक में कहा गया श्री नारद वाच, उसके अंदर एक नारद जी कहते हैं अन्य दुष्ट जो श्याम, आगे श्लोक में सॉरी सातवां श्लोक में जगो करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये जगो शब्द यानी सातवां श्लोक में एक जगो शब्द है, ये शब्द मतलब इसका अर्थ है कि नारद जी बोलने लगे। कैसे बोलने लगे? गुस्से से, जोर जोर से बोलने लगे। अस्तित्व में उनका जो क्रोध था वो क्रोध किस प्रकार था, ये क्रोध के पीछे वर्णन किया गया है। अस्तित्व क्रोध नहीं था, ये प्रेम था। जैसे प्रेम में कभी कभी कुछ क्रोध होता है या कुछ दूसरों को कुछ किया जाता है। उदाहरण दिया गया है, एक माँ बहुत अच्छा खीर बनाई, मीठा खीर बनाई, बना के बच्चे को खिलाना चाहती है लेकिन बच्चा सो रहा है तो क्या करेगी माँ? हाँ, इनको क्या बोलते उसको? चिकोटी बोलते हैं। हाँ, चिकोटी करके बच्चा आ करके रोता है, उठ के दर्द होता है, लेकिन वो दर्द किसके लिए है? वो माँ जो खीर पिलाने के लिए है। वैसे ही हमारे जीवन में, भक्तों की जीवन में जब दुख आता है ये भी भगवान का चिकोटी है। किसके लिए है वो? ताकि हमको खीर पिलाना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा उठ के बोलेगा माँ तो ऐसे बोला था, उठाया जिलाने लगा, माँ तो हाथ में खीर लेके बैठी है। ये मूर्ख बच्चा जो है वो सोचता है कि माँ को गाली देगा। सिर्फ में ये अच्छा लगना चाहिए। ये जो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं या कोई हमको डांटता है तो ये हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए, खीर मिलने वाला है करके। बाद में खीर मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो अज्ञान है उसको उठाने वाला कार्य है, होश में लाने वाला कार्य है। जैसे कभी कभी गुरु हमको डांटते हैं, गुरु का डांट हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है और गुरु का प्रशंसा जो है उस खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, उधर से भाग जाना चाहिए। कभी भी हमारा गुरु हमको प्रशंसा करते हैं ये समझना चाहिए बहुत गलत है, गुरु झूठ बोल रहे। एक समय हमको ऐसा सोचना चाहिए, गुरु तभी झूठ बोलते हैं ऐसा कब सोचना चाहिए जब आपकी प्रशंसा करते हैं। क्या आपकी निंदा करते हैं सोचना चाहिए, बड़ा एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहा है, क्योंकि हमको सत्य की ओर उन्मुख करा रहे हैं। जैसे नारद जी इधर ये सारे जितने भी या नलकुवेर मणिग्रीव है उनको सत्य की ओर उन्मुख करा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, डांटा, जगो मतलब डांटा। ये जो उन्होंने इस प्रकार की जो डांट है, श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं ये जगो शब्द के द्वारा केवल नलकुवेर मणिग्रह को ही प्रवचन नहीं दे रहे बल्कि सभी लोगों को प्रवचन दे रहे नारद मुनि। तो जोर से क्यों बोलने लगे नारद जी, तो मन ही मन में सोच सकते हैं, जोर से इसलिए बोलने लगे क्योंकि सारे जगत को सुनाने के लिए, केवल नलकुवेर मणिग्रह को नहीं, नारद जी का अनुकंपा ऐसी थी इनको माध्यम में रखे सारे जगत में जीवों को जगाऊं। इसलिए जब कोई गलत करता है तो गुरु आके जोर से डांटते हैं, जब झापड़ मारते हैं तभी सीधा होता है। जब तक ये झापड़ नहीं खाते, जब तक चुटकुली क्या बोलते हैं, क्या मैं भूल गया, चिकोटी जब नहीं मिलता है तब तक जगते नहीं है, प्रेम से उठा ले जाओ नहीं जगेगा। तो इसलिए ये हम इस नारद मुनि का ये कार्य, ये श्लोक है, इधर दवाई दिया गया है। तब नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा कौन सा दवाई है जिसको दिया जाए, तो ये श्री प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो गरीब अवस्था से अमीर बनता है ना, वो व्यक्ति जो है पैसे का वैल्यू जानता है, पैसे का वो कीमत जानता है, एक एक रुपए मेहनत करके कमाया ना, इसलिए वो सरल जीवन यापन करता है और उस धन को सही जगह इस्तेमाल करता है, दूसरों के कल्याण में इस्तेमाल करता है। लेकिन जो बड़े परिवार खानदान के जो पुत्र होते हैं वो क्या करते हैं, उनको धन का कीमत नहीं मालूम, रुपए का कीमत नहीं मालूम, इसे क्या करते हैं, वो ऐसे खर्चा कर देते हैं, उनको ये तो क्या है 1000 रुपए चलो उड़ा दो, उनको ऐसा मन में रहता है। आप ये सत्य बात है, देखिएगा तो ये जितने भी बड़े बड़े परिवार वाले हैं, जैसे बिरला हुए, उनके परिवार में जो उनके पूर्वज थे वो बहुत दान धर्म किए, क्योंकि उनके बहुत छोटे से आए हैं, तकलीफ क्या है, धन क्या महत्व उनको मालूम है, गरीबी का तकलीफ क्या उनको मालूम है, इससे गरीबी से आए वो अमीर बने, तो अमीर बनने के बाद ही सरल जीवन यापन करते हैं, तो इसकी वजह से वो लोग बहुत दान धर्म किए। दूसरी ओर उनके जो पुत्र है बचपन से उनको बहुत पैसा ऐश्वर्य आराम देखे, जिससे क्या किए सारे पाप करने लगे, वो पाप करते करते क्या हुए ना, वो पैसे का वैल्यू जानते हैं ना, वो लोग दान धर्म करते हैं, इसकी वजह से सारा पुण्य खत्म हो जाता है और वो रोडपति बन जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, उनसे कभी पूछो पैसा नहीं, हमेशा लोन में रहते हैं, लेकिन आपके पिताजी तो हमेशा दान देते थे, आप तो कारोबार तो बढ़ाया तो बोलेंगे लोन में है, इतना बड़ा कारोबार है लेकिन फिर भी लोन में है, बहुत समस्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि दान धर्म नहीं करते। और क्यों नहीं करते दान धर्म, क्यों नहीं करते, क्योंकि दूसरों का दुख नहीं मालूम, दूसरों का खुद दुख क्यों नहीं मालूम, क्योंकि उनकी खुद ने अनुभव नहीं किया है। इसलिए हमको याद है कि खासकर से मैं तो ज्यादा पैसा नहीं मांगता था, कि मेरे पिताजी से मेरे भाई पैसा मांगता था, कितना पैसा है क्या करो दो, मुझे वो खर्चा करना है, उधर जाना इधर जाना है, तो उनको एक भी पैसा हाथ में नहीं मिलता था, पैदल चल के जाओ पैदल आके आओ, रिक्शा का कोई सुविधा नहीं देते थे, पैसा खूब था भरपूर है घर में आके जो खाना है खाओ, लेकिन एक पैसा हाथ में नहीं जाता, क्यों, क्योंकि एक बार हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि पैसा बहुत है सब कुछ है लेकिन ये दिया क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम अगर इसका आदत हो जाएगा तुम पापी बन जाओगे। किसी के हाथ में अगर पैसा आ जाता है तो पैसा जो है निश्चित रूप में मन बलेगा पाप में खर्चा करो, क्योंकि मन में जन्मतः पाप, इसलिए तुम जन्म लिए, क्यों जन्म लिए, वाई वी आर टेकन, वाई टेकन बर्थ, क्योंकि मन में पाप है इसलिए जन्म लिए, नहीं तो भगवान के धाम में जाते, और पाप को पूर्ण करने का अगर मौका मिल जाए तो वो मौका क्या है, धनी है, सुविधा मिल जाए तो धनी है, इसलिए इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। जैसे हाथ में धन आता है, जैसे हाथ में सुविधा आता है, तुरंत हमारे मन में जो पाप की प्रवृत्तियों को पाप करने के लिए मौका मिल जाता है। इससे नारद जी ने सोचा कि इनका अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे उनको गरीब बनाना होगा, आई हैव टू मेक हिम पुअर। इससे आगे भागवत में भी एक बहुत प्रसंग आता है जिसके अंदर कहा गया है, हरिष्येत धनम शनि यस्यानुग्रहामी हरिष्येत धर्म शनि। तो आप देखिए श्री प्रभुपाद जी बार बार श्लोक को उच्चारण कर रहे थे, जब उनका पूरा जो फैक्ट्री सब लूट लिया किसी ने, सब कुछ हो गया, तब उनके घर से भी उनको कुछ मिल नहीं रहा था, कोई आदर नहीं मिल रहा था, तो घर वाले भी छूट गए उनसे, प्रभुपाद जी बार बार श्लोक को उच्चारण करते थे, यस्यानुग्रहामी हरिष्येत धर्म शनि। भगवान क्या करते कर? लेकिन वही भगवान ने क्या किया, प्रभुपाद जी को इतना धन दिया, ऐसा घर बनाया पूरा दुनिया उसके अंदर रह सकता है। तो हमारे जीवन से अगर ये धन छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, और पोस्ट छूट जाता है, सुंदरता छूट जाता है, ये सोचना चाहिए कि भगवान सब विशेष कृपा है। तो भगवान तो सीधा नहीं करते, कोई भक्त के द्वारा आपके साथ में रहने वाले से करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि जो हमारे साथ में रहने वाले की वजह से हमारा कुछ चीज छूट गया, ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान का विशेष कृपा है तभी छूटा है, भगवान का विशेष अनुग्रह है तभी छूटा है, नहीं तो नहीं छूटता। जैसे इधर नलकुए मणिग्रीव, उनको इतना अहंकार हो गया था, नारद जी इतने महान भक्त है, ऐसा नहीं कि नारद जी को कभी देखे नहीं थे, वो लोग मालूम है नारद जी कौन है, महान भक्त है, आने नारद जी को देखने पर भी अपने कपड़ा भी नहीं पहने, नंगे खड़े रहे और ये स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे। देखिए कितना अहंकार के व्यक्ति को क्या कर देता, धन का अहंकार व्यक्ति को क्या कर देता है। इसलिए नारद जी कहते हैं एक उनको दवाई देना है, क्या वो दवाई, गरीबी दवाई है, उनके लिए गरीबी नामक दवाई देता हूं। इसलिए इधर इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द है, असतः श्रीमदानंदस्या, असतः श्रीमदानंदस्या, कि असत वस्तु को सत्य करके मान के ये अंधकार में डूबे हुए हैं, मूर्ख बन गए हैं। मद अंधस्या क्या हुआ, दारिद्र्यम परमांजनम, दारिद्र्यम मतलब क्या है, ये दरिद्रता जो है उसके लिए बहुत बड़ा दवाई है, इससे बढ़कर कोई परम अंजनम, परम मतलब सबसे बड़ा दवाई है दरिद्रता जो है सबसे बड़ा दवाई है। तो क्यों दवाई क्यों है, जैसे अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, खाली दवाई नहीं देते, ये दवाई क्यों है, कैसे काम करता है, बीमारी क्या है, सब बताते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं ऐसे दवाई लेके चले जाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स पूरा आपका ये दवाई बीमारी है, ऐसा क्यों, ये बीमारी ऐसा हुआ, पूरा एक घंटा प्रवचन देखेंगे, तो वो सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार डॉक्टर के बहुत सारे चार प्रकार के स्तर होते हैं। जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है वो दवाई वाई कुछ नहीं देता, वो प्रवचन देता है, वचस्पति बोलते हैं, वचस्पति वैद्य बोलते हैं, वो केवल प्रवचन देते हैं, ये बीमारी का कारण ये है और बीमारी का इलाज ये है, बस खाली, और ये इलाज क्यों है, किस प्रकार काम करता है, खाली प्रवचन देते हैं। और जो बाजू में दवाई प्रवचन सुन के जो दवाई बना के देने वाला वो सेकेंड क्लास होता है, और थर्ड क्लास वैद्य है वो क्या करता है, वो स्पर्श करता है, अलग अलग प्रकार का मसाज करता है, ये सबसे थर्ड क्लास माना जाता है। फोर्थ क्लास जो है वो सच में काट फूट के ऑपरेशन करता है, वो फोर्थ क्लास माना जाता है। इधर चार प्रकार के चार लेवल के वैद्य है, जो टॉप मोस्ट लेवल के वैद्य है वो खाली प्रवचन देते जैसे नारद जी, तो उन्होंने बीमारी नहीं बताया, वो बीमारी की वजह से कैसे कैसे सिम्टम्स है, दुख है, वो भी नहीं बताया, वो भी नहीं, साथ साथ उन्होंने क्या कहा, दवाई भी दिया, चौथा चीज तीन चीज दवाई है, और दवाई कैसे काम करता है वही वर्णन करते हैं। मतलब कोई दरिद्र हो गया तो क्या हुआ, आत्मोपमेयम उपमेय, उपमेय मतलब अपने आत्मा मतलब स्वयं के साथ तुलना करता है। तुलना का अर्थ क्या है कि मान लो कि रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति है, बहुत दुखी है, उसका दुख कितना है वो तभी अनुभव होगा जब हम भी उस दुख से गुजरे हों। जैसे कल हम ट्रेन में आ रहे थे तो मैं कुछ प्रश्नोत्तरी कर रहा था, तो वो लोग प्रश्न पूछते थे, मैं जवाब दे रहा था, यात्रा लेके गया था, बहुत सारे गृहस्थ बैठे थे, कुछ वो एक प्रश्न पूछ रहे थे, मैं ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था, संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था इतना शास्त्र पढ़ा है लेकिन फिर भी क्यों उनका ठीक ठाक जवाब दे नहीं पा रहा हूं। तो तब मैं मेरे मन में स्ट्राइक हुआ क्योंकि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जीवन में जो दुखों का अनुभव हुआ ना, वो अनुभव के ऊपर आधारित होकर प्रश्न पूछ रहे थे। मेरा जवाब क्या था? थियोरेटिकल था, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बड़ा तब मैं सोचा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उधर एक भक्त सीनियर डिवोटी रसानंद उनको बुलाया, प्रभु जी आप संभालो, आप समझाओ। जब उन्होंने समझाया तो तुरंत सबको समझ में आएगा, हाँ बराबर है। क्यों? क्योंकि जब तक वो दुख क्या है अनुभव ना हो, तो उस दुख हमको वो दुख का अनुभव ना हो तो हमको पता ही नहीं लगेगा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। इट इज अ फैक्ट। वही व्यक्ति उस दुख का अनुभव दुख के बारे में कह सकता है जो खुद अनुभव किया हो, नहीं तो हिंसा करेगा। मैं सोच रहा था कि क्या फालतू प्रश्न पूछ रहे, लेकिन मेरे लिए वो फालतू था लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो उस परिस्थिति भयानक परिस्थिति से गुजर रहे। ये बहुत सही बात है। अनटिल लेस योर एक्सपीरियंस अनुभव ना हो तो हम दूसरों की दया नहीं कर सकते, दुख का अनुभव ना दया नहीं कर सकते। तो इधर उन्होंने कहा आत्मोपयन, जब ये नलकुएर मणिगृह गरीबी क्या होता है उसका अनुभव करेंगे तभी वो जीवों के ऊपर दया करेंगे। आपको भूतानि दारिद्रम परम इच्छते, दारिद्रम परम इच्छते, जब क्या होगा ये दरिद्रता को जब अनुभव करेंगे परम इच्छते। ये जो चौथे लाइन में जो परम शब्द है उसका अर्थ है परफेक्ट, इच्छते मतलब सही तरीके से देख पाएंगे। पहले लाइन में अंधानाम, अंधानाम का अर्थ क्या है? अंधकार, मतलब अंधस्या, अंधस्या का अर्थ अंधकार में है। तो अभी देख पाएंगे, लास्ट लाइन क्या, लास्ट शब्द क्या है? इच्छते, इच्छते मतलब देख पाएंगे। कब देख पाएंगे? जब वो ये दरिद्रता को अनुभव करेंगे तभी देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे वो लोग? दूसरों की दुखों को देख पाएंगे। दूसरों को दुखों को देखना ये आत्म साक्षात्कार है। कंपैशन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरों का दुख को अनुभव करना, सहन देखना, देख के ये सोचना, उनके प्रति दया भावना को व्यक्त करना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद एवाय भक्ति लता बीच। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शब्द है परमम अंजनम, परम शब्द के द्वारा सूचित किया गया है कि दरिद्रता ही नलकुएर मणिगृह का दवाई नहीं था। जिस व्यक्ति ने दरिद्रता दिया, कौन दिया? भारत, वो महत्वपूर्ण है। अगर मान लो वो दरिद्रता कोई और व्यक्ति देता तो उस प्रकार कार्य नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि कोई दवाई है, आप कोई आयराम गायराम से लेंगे तो काम नहीं करेगा, डॉक्टर से लेंगे तो काम करेगा। तो वैसे ही भले ही अनेकों अनेकों लोग इस जगत में अहंकार से युक्त है, लेकिन उसका जो दवाई है दरिद्रता, वो जब तक एक भक्त से नहीं मिलता है तब तक वो कोई काम का नहीं। तो भक्तों के द्वारा मिला हुआ हरेक वस्तु हमारा परम सौभाग्य का कारण है। इसलिए नारद जी का संगति प्राप्त हुआ, इसकी वजह से इनको बराबर दृष्टि प्राप्त हुई। कैसी दृष्टि प्राप्त हुई? इतना अद्भुत दृष्टि प्राप्त हुई कि स्वयं साक्षात भगवान का वो लोग दर्शन किए। बाद में हमको ये जो शब्द है दरिद्र परमीक्षते, परमीक्षते परफेक्ट विजन, उनको एकदम सही विजन यानी सही दृष्टि प्राप्त हुआ। हमारी जो दृष्टि का परफेक्शन क्या है, परफेक्शन क्या है, व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ आई? सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मुलाकात हुआ तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी आलिंगन किए, आलिंगन करके बोलने लगे कि वो तुम मुझे पवित्र कर रहे हो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, आप मुझे स्पर्श मत करो, मैं स्पर्श करने योग्य नहीं हूं, कितने नम्रता को व्यक्त कर रहे। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अक्षणो ही फलम तादृशा दर्शनम ही। अक्षणों मतलब हमारी आंखों का परम सिद्धि क्या है? भक्तों का दर्शन करना है। हमारा शरीर का परम सिद्धि क्या है? तद्भक्त्र संगान, उनकी जो शरीर है उनको आलिंगन करना है। और हमारी जो जिह्वा है उसका परम सिद्धि क्या है? भक्तों का गुणगान करना। तो परमिक्षता, इनको सिद्धि प्राप्त हुआ नारद जी के शाप की वजह से। ये दो नलकुबेर मणिग्रीव को सिद्धि प्राप्त हुआ। क्या सिद्धि प्राप्त हुआ? उनका ऐसा दृष्टि प्राप्त हुआ जिसके द्वारा वो भगवान को देख सकते हैं, और सारे ब्रजवासियों को देखा, और उनके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा था सबको देख रहे थे। ऐसा नहीं कि नलकुबेर मणिग्रीव जब वृक्ष के रूप में जब नंद महाराज के आंगन में आए, वो वृक्ष कहां के वृक्ष है? वो नंद महाराज के आंगन के वृक्ष है। उधर के जितने भी सारे लीलाएं वो देख रहे थे, वृक्ष के रूप में भी देख रहे थे। उनकी प्रार्थनाओं में ये बात आती है कि हमका ब्रह्म सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमको कोई देख नहीं रहा था लेकिन हमने आपकी सारी लीलाओं को देखा। कि परम इच्छकते के द्वारा ये भी सूचित किया जा रहा है, केवल दरिद्रता की वजह से दूसरों को दुख को ही देखना नहीं है, बल्कि उनको ऐसा दृष्टि प्राप्त हुआ जिसके वजह से उनको भगवान प्राप्त हुए। सार रूप में कहा गया है, दूसरों का दुखों को देख के उनके प्रति दया करना भगवान को देखने के बराबर है, या भगवान दिख जाते उससे। ये सार है। तो नारद जी ने ये नलकुबेर मणिग्रीव को इस प्रकार उद्धार किया है। इस श्लोक में दरिद्रता नामक दवाई का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? अच्छा प्रश्न, इनका प्रश्न ये है, सुदामा के जीवन में दरिद्रता थी तो भगवान ने उनको धन देके दवाई दिया। तो सुदामा का चरित्र जो है द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। रासलीला के बाद अगर कोई कृष्ण लीला जो लोग गलत समझे हैं इस जगत में, वो है सुदामा चरित्र। भागवत कथाकार वगैरह इत्यादि जो करते हैं सुदामा चरित्र, वो आपको इतना घृणा आती है सुन के, ऐसा बोलते हैं कि क्या चरित्र कर रहे हैं। सुदामा को एक ऐसा गरीब व्यक्ति बनाया जो धन की आशा में द्वारका गया और भगवान ने धन दिया नहीं दिया, रोते रोते दुखी होकर सुदामा आए। जब आके देखे तो बहुत बड़ा पैलेस था उनका, वो देख के बहुत सुखी हो गए, ऐसा बता देते। लेकिन बिल्कुल गलत है। सुदामा भगवान के पास धन लेने के लिए नहीं गए थे। उनकी पत्नी बार बार बोल रही थी, बच्चों के खाते तो कम से कम जाओ, कुछ मांगने के लिए आओ। सुदामा सोच रहे थे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। देखिए, उन्होंने कभी नहीं सोचा मैं धन मांगने जाऊंगा, नहीं, क्या सोचा? वैसे देखने का कृष्ण का सुंदरता का देखने का इच्छा कर रहा है, खाली हाथ कैसे जाऊं, ये विचार। और भी बहुत सारे टीका है, आप कभी समय मिले तो वो प्रसंग आप पढ़िएगा, विश्वनाथ जी किताब सार्थ दर्शनी कमेंट में। इतना सुंदर, इतना अद्भुत है, भक्ति रस से ओतप्रोत होने वाला है। सुदामा के मन में दूर में भी विचार नहीं था मैं गरीब हूं करके, दूर में विचार नहीं था उनको, उनको होश ही नहीं था। उनकी पत्नी जो है जो भी मिलती थी वो सुदामा को खिला के, बच्चों को खिला के खुद भूखा रह जाती थी, लेकिन सुदामा को ये होश भी नहीं था कब पत्नी भूखी है। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। हमेशा कृष्ण के लीलाओं में, कृष्ण स्मरण करते हुए मग्न थे, भजन में मग्न थे। जो इतना दिव्य स्तर में रहता है भक्त, वो ये संसारिक गरीबी अमीरी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब वापस आके देख इतना बड़ा मेला, सोचते किसका ये। उनकी पत्नी जो है बहुत सुंदर गहने वगैरह पहन के जब बाहर आई तो समझ नहीं, ये क्या हो गया तुमको। ये तो द मोस्ट मिसअंडरस्टूड आफ्टर रासलीला, आपने एक नोट करके रखी है, ठीक है। और एक प्रश्न है, ठीक है, कई बोल रहे हैं।
नारद जब खा जाता है तो वो मांसाहार खाना शुरू करता है।
बराबर।
तो यहाँ पर नल कुबेर देवगण है, मांसाहार के भोजन है आसुरी भोजन माना जाता है, तो ये देवगण कैसे?
ये मांसाहार का अर्थ है कि दूसरों को दुख देना। ऐसा नहीं कि सारे देवता लोग वेजिटेरियन हैं, उनका हिसाब किताब कुछ अलग है, उनका रूल्स अलग है, उनका रूल्स अलग है, उनका शराब अलग होता है, सब अलग अलग होता है, उनका हिसाब किताब कुछ अलग है। आप ये मत सोचो कि अलग अलग प्रकार के जो स्तर के देवता है, हर व्यक्ति का नियम अलग है, उनके स्तर के अनुसार नियम अलग है। तो नलकुएर मणिग्रह वेजिटेरियन थे क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका नियम उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ बराबर है, वो मैथुन करने की प्रवृत्ति क्यों आता है? मांसाहार से आता है। अगर कोई सात्विक भोजन ग्रहण करे ना, वो रजस नहीं रहता है, तो रजस कम होने की वजह से वो ज्यादा व्यभिचार नहीं करता है, वो अन्नमयम ही सौम्य मनः, आहार शुद्धो सत्वशुद्धि ही, सत्वशुद्धो दुर्वास्मृति ही, सुतर्लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आप देख सकते हैं, यू कैन सी जा राजसिक भोजन खाते होंगे, राजसिक भोजन, राजसिक जहां है उधर, क्योंकि सात्विक व्यक्ति व्यभिचार के, देखिए सबके अंदर कामवासना है, लेकिन वो समाज के डर से, शास्त्र के डर से, गुरुजनों के डर से या पाप के डर से वो नहीं करता है, वो सात्विकता है। ये जो समाज का डर जो है और पाप का डर जो है वो सात्विक विचार है, ठीक है? नहीं हाँ, तो रजस जो है, रजो रागात्मक विद्युत, रज से राग उत्पन्न होता है, कामयेश क्रोधयेश, जब रजोगुण आ जाता है तो अंधा हो जाता है, तो काम जो है वो तृप्त करने के लिए कुछ भी कर देता है। तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, भय और लज्जा को त्याग कर देता है, ठीक है? नहीं तो सात्विक है तो भय लज्जा ये सब रहती है, उसकी वजह से वो नियंत्रित रहता है, ठीक है? श्री प्रभुपाद की जय।